कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने अभी 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, मुझे 400,000 बार हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ प्राप्त हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और आपने भी किया होगा तो आपको भी प्राप्त हो गया, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो आइए अभी हम कृष्ण बलराम के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, एक्सटेंडेड वृंदावन कहते हैं उसको, जब वृंदावन वहाँ नहीं था पहले। प्रभुपाद की कृपा से 1977 में रामनवमी के दिन गौरनिताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर को एक ही साथ में स्थापन किया गया, इसलिए कृष्ण बलराम मंदिर में रामनवमी के दिन तीनों विग्रहों का एक साथ में अभिषेक होता है। मेरा ये दास का ये भाग्य रहा है कि एक रामनवमी में मैं भी वहाँ पर था आईकेएम के बाद में, बाय लक बाय चांस, तो मैंने तीनों विग्रहों का अभिषेक किया है ऑल्टर में जाकर, गौरनिताई का, कृष्ण बलराम का और राधा श्याम सुंदर का, तीनों के चरण छुए हैं, हाँ, राधा श्याम सुंदर के, कृष्ण बलराम के। तो इसके बाहर निकलते ही परिक्रमा मार्ग शुरू होता है, भगवान अपना जो मंदिर है वो साक्षात परिक्रमा मार्ग पर ही है। अब वहाँ से हम आगे निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिस आएगा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, कल परसों एंड में दिखाऊंगा। और भक्ति वेदांत हॉस्पिस है ना, उसको पार करके हम राइट टर्न लेते हैं तो फिर आदि वराह घाट आता है, वहाँ पर वराह देव जी आए थे और वहाँ पर वराह देव का निवास है। बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर है, बहुत लोग जानते नहीं इसको, लेकिन वो वहीं पर आदि वराह घाट पर ये कृष्ण बलराम के आगे वराह देव का मंदिर है। अभी चित्रपट इतना साफ नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले फोटो में जो बड़ा फोटो रखा है ना किसी संत का, उसके ऊपर वराह देव की मूर्ति है, देखिए आप, बीच में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति है, और शायद राम लक्ष्मण और सीता देवी का फोटो है, बीच में मूर्ति है, आगे उसके राधा और श्याम सुंदर का मूर्ति है, और राइट सबसे राइट मोस्ट में वो संत के फोटो के ऊपर जो है वराह देव की मूर्ति है। और ये एंट्रेंस है और ये बाहर से आपको दर्शन हो रहा है। तो वराह भगवान को प्रणाम कीजिए, वराह भगवान के हम बहुत ऋणी हैं क्योंकि वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद में पृथ्वी देवी को पृथ्वी देवी को उन्होंने वराह पुराण, आदि वराह पुराण का वर्णन किया। इसलिए उनके द्वारा ही पूरे ब्रज का महात्म्य हमको, उनके श्रीमुख से पूरे ब्रज का महात्म्य हमको प्राप्त होता है। देखिए ये है वराह देव की मूर्ति, हाँ, शिवराह देव भगवान की जय हो जय हो जय हो। उसके जरा सा आगे चले जाएंगे तो एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रिय स्थान आता है जिसका नाम है मदन टेर। तो मदन टेर, टेर यानी पुकारना, मदन यानी कामदेव, हाँ, कामदेव यानी क्यूपिड, द क्यूपिड, द मोस्ट ब्यूटीफुल देवता, उसकी पत्नी का नाम है रति देवी और कामदेव, ये देवता में सबसे सुंदर देवता हैं, बहुत सुंदर। और इनका काम क्या है, ये ना पुष्प धनुष और पुष्प बाण लेकर जाते हैं, कोई लोखंड का धनुष बाण लेकर नहीं जाते, 20 हाथ का धनुष होता है, प्रभु रामचंद्र का सबके हाथ में 20 हाथ का लंबा धनुष होता है, और विष्णु का धनुष उससे बड़ा होता है, पता नहीं बहुत, अभी उसका गणित अलग है, लेकिन ये पुष्प का बना हुआ धनुष लेकर जाते हैं, पुष्प का बाण, फूलों से बना हुआ, कितना अच्छा लगेगा ना बाण आएगा तो। लेकिन होता क्या है, जब ये बाण मारते हैं ना पुष्प का, तो जिसको बाण लगता है ना उसके हृदय में काम वासना निर्माण होती है, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति जो आकर्षण है ना वो पैदा होता है इसके बाण के विद्ध होने के बाद। तो ये सब जगह सबके हृदय में इनके बाण अटके हुए हैं, दुनिया में सब लोग पागल हैं इनके बाण के लगने के बाद में, सब लोग भगवान को भूल कर लगे हुए, नर मादी, कुत्ता और कुत्ती और बिल्ला और बिल्ली, जो भी आप कहो, सब लोग लगे हुए हैं इसके, इनके बाण के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ ये स्थान जो है ना, इसमें रास लीला हो रही थी शरद ऋतु की, और आपको आश्चर्य होगा बंसीवट किधर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और हम कहाँ हैं, रमन रेती में भक्ति वेदांत हॉस्पिस कृष्ण बलराम मंदिर के पास है। तो ये रास मंडल यहाँ कैसे आ गया, रास मंडल तो वहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा ना पूरा वृंदावन रास मंडल है, इतने करोड़ों गोपियाँ नाच रही हैं, हर एक के साथ कृष्ण नाच रहे हैं। तो यहाँ पर वो कामदेव आया था, देखा ये कृष्ण है और बहुत सारी गोपियाँ हैं, सब लोग हास परियास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो उनको लगा कि अच्छा है जगह ये, यहाँ पर एक पुरुष और कन्याओं के बाण मारने से इनका अपना काम हो जाएगा। तो उन्होंने पुष्प बाण उठाए दोनों ने, और कामदेव ने कृष्ण के मुख कमल पर निशाना बनाया और बाण ताना, पुष्प बाण। लेकिन जैसे ही बाण के अग्र स्थान पर कृष्ण के मुख कमल का दर्शन किया, तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कामदेव का सौंदर्य इतना उत्कट सौंदर्य है, उसके कंदर्प कोटि, ऐसे कोटि कोटि कामदेव भी एकत्र हो गए ना, तो भी वो सौंदर्य से तुलना नहीं हो सकती है। वैसा सौंदर्य हमारे कृष्ण भगवान के मुख पर था, श्याम सुंदर जी के मुख पर था, और वो देखकर कामदेव भी हैरान हो गया। उसके हाथ से पहले धनुष और बाण फिसल गया, कुंड मोर, मतलब इतना आनंद का और इतना अनुभव हुआ उसको भगवान के सौंदर्य का कि उसके हाथ से दोनों के बाण और धनुष फिसल गया पहले, और उसके बाद खुद भी वो पिघल गया रति देवी के साथ में। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, वो युद्ध उद्ध नहीं किया, खड़े खड़े अपने होने से ही कामदेव की शक्ति को परास्त कर दिया उन्होंने। इसलिए ये जगह वो जगह है जहां पर कामदेव को भगवान ने परास्त किया। और एक जगह है छाता के पास रणवारी, उसकी कथा आगे बताऊंगा आपको। रणवारी में भी भगवान ने कामदेव को परास्त किया है। तो अगर कामदेव के बाणों से विद्ध होने से बचना है, या तो कामदेव का बाण जो अब विद्ध होकर बना रखा है हृदय में, उसको निकालना है, उसके प्रभाव को नष्ट करना है, तो केवल कृष्ण भगवान ही आपको बचा सकते हैं। खुद के साधना के बल पर, खुद के बल पर किसी भी प्रयास से, तपस्या से, दान पुण्य से हम कामदेव के विद्ध हुए बाणों को निकाल नहीं सकते, कृष्ण की कृपा से ही निकाल सकते हैं। इसलिए मदन टेर पे हम लोग पुकारते हैं कृष्ण भगवान को कि आप हमें कामदेव के प्रभाव से बचा लो। यहाँ पर प्रार्थना करो आप लोग, ये बहुत ही प्राचीन जगह है। आज के स्थिति में अगर आप सोचेंगे ना मैकेनिकली पावर या टेक्निकली, तो ब्रज की सबसे कॉस्टली जगह है ये। कृष्ण बलराम मंदिर आने के बाद ये जंगल की भूमि को भी मंगल का भाव आ गया, तो करोड़ों की जगह है ये, छोटी सी जगह है, शायद 2 एकड़ की भी नहीं होगी, 1 एकड़ 1.25 एकड़ होगी। लेकिन आज भी ये जगह ब्रजवासियों ने, वो बताऊंगा कौन है वो ब्रजवासी, उन्होंने उसको वन के रूप में संभाल के रखी है। और जो ब्रज रज हम कहते हैं ना, मुलायम मखमली, हाँ टेलकम पाउडर की तरह एकदम महीन, वो आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि तो जमुना जी के रज ही अभी बना के रखी है उधर, कोई और पत्थर टीस कुछ नहीं है उधर, और वही सारे तमाल के पेड़, कदम के पेड़, छोकर के पेड़, गुलेर के पेड़, जितने जितने पीपल के पेड़, जितने भी महान पेड़ों का दर्शन आपको मैंने कराया ना, वो सारे पेड़ वहाँ पर एक जगह पर मुमकिन है। और आज भी वहाँ पर मोर आते हैं, तोता आते हैं, दाना खाते हैं, आज भी वहाँ पर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है क्योंकि वो पक्षी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे हम भी जाते हैं वहाँ पर तो बिना माइक्रोफोन की आराम से बैठ के कथा करते हैं, कोई मृदंग करताल वहाँ पर ढाड़दार बजाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रज का जो वातावरण है, वृंदावन की जो महिमा है, जो भगवान का प्रियतम स्थान है वृंदावन, उसकी जो महिमा है उसको अनुभव करने की जगह है ये मदन टेर। और हमारे हॉस्पिस के बिल्कुल पास में है, तो जो जो हमारे हॉस्पिस में आते हैं लास्ट स्टेज में आते हैं, और जो चलने लायक होते हैं अभी तक बिस्तर में अटके हुए नहीं है, उनको हम यहाँ ले जाते हैं और वहाँ बैठा कर घंटों घंटों कहानी सुनाते हैं भगवान की उस वातावरण में। कितने लोगों को मैं ले गया हूँ यहाँ पर, गुणग्राही महाराज को ले गया हूँ, हरे नाम प्रभु को ले गया हूँ, कितने कितने लोगों को गुण गुरु प्रसाद स्वामी को ले गया हूँ, वो तो टर्मिनल पेशेंट नहीं थे लेकिन वो मिलने आए थे उनको, ऐसे बहुत सारे लोगों को नाम भी याद नहीं रहे, सबको मैं वहाँ ले गया क्योंकि वो एकदम हॉस्पिस के पास में है, या तो व्हील चेयर में या चला के या गाड़ी में वहाँ पर जा सकते, 2 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं, और इतना उत्कट स्थान है। लेकिन अधिकतर लोग वहाँ पता ही नहीं, उनको जाते नहीं कोई वहाँ पर। अभी देखिए उसकी बहुत सारी महिमा है, हो सकता है आज कितने बज गए, अभी 8 बज गए ना, 8:30 तक हमको टाइम है आज की कथा करने का, कोई बात नहीं, जो भी कथा करेंगे दिल से करेंगे, कोई रोक टोक के, कोई ना वो क्या कहते हैं उसको, संकोच से नहीं करेंगे। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, ठीक है ना, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और वो शिव जी का भक्त था। और देखो शिव जी, गणेश जी, देवी जी, इनके जो भक्त होते ना वो स्वार्थी भक्त होते हैं। हाँ मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन वो कामय स्तय ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, काम से व्याकुल होकर जिनका बुद्धि हरण हो जाती है, ऋत ज्ञाना ज्ञान भी हरण हो जाता है, ऐसे लोग अपनी कामनाओं की तृप्ति करने के लिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता शरण जाते उनको, ऐसे गीता में भगवान ने स्वयं लिखा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, फिर कृष्ण को भूल जाते हैं और अपनी कामनाओं की तृप्ति में देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं को भगवान शक्ति देते हैं, उनकी कामनाओं की तृप्ति करने के लिए वरदान देते हैं, शक्ति देने वरदान देने की शक्ति देते हैं। लेकिन आत्मदेव वैसा भक्त नहीं था, आत्मदेव निरपेक्ष भक्त था, एकदम दुर्लभ भक्त था शिव जी का। वो शिव जी का भक्त था लेकिन दुर्लभ था, शिव जी से कोई भी अपेक्षा नहीं थी उसे, तो ये मेरी अच्छी इच्छा पूरी हो। रावण ने उसका भजन किया है, कंस ने भजन किया है, क्या क्या किसने, रावण कुंभकर्ण सबने, इतने राक्षस हुए, सब शिव जी के भक्त थे। हाँ, सब स्वार्थी महाराज थे, सब भस्मासुर और बाणासुर सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए शिव जी का पूजन करते थे, लेकिन आत्मदेव निरपेक्ष था। इसकी निरपेक्ष भक्ति पूजन देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने उनको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा, आत्मदेव मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहे हो मांगो। तो आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं तो आपके लिए कोई मांगने के लिए भजन नहीं किया था आपका, मैं तो आपको चाहता हूँ, आपका चाहता हूँ, कोई लोभ नहीं मेरे मन में, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, आपका आपने दर्शन दिया वही हमारे लिए कृपा है आपकी। नहीं नहीं हम देवता लोग आते हैं तो हमारी दर्शन खाली जाता नहीं है, वरदान देके जाते हम तो। नहीं 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 महाराज जी हमको तो कोई इच्छा नहीं है। लेकिन देखो इतना निरपेक्ष भक्त था ना, शिव जी की प्रसन्नता यही उसके जीवन का उद्देश्य था। क्या प्रमाण है उसका, बाद में उसने मांगा, यही प्रमाण है उसका। क्योंकि तो उसने क्या देखा कि शिव जी को खुशी होगी अगर मैं कुछ मांगूंगा, ये इनकी इच्छा है कि मैं मांगू तब उनको संतुष्टि होगी। तो उन्होंने सोचा क्या मांगू, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वो श्रीधर कोलवेज को पूछा था, मांगो श्रीधर मांगो, तो नहीं 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 बोल रहे हैं वो, अष्ट सिद्धि दे दूं क्या, पृथ्वी का राजा बना दूं क्या, वैकुंठवास दे दूं क्या, चतुर्भुज रूप दे दूं क्या, सिद्धि दे दूं क्या, सब बोला ना, क्या करूंगा उसको लेके। लेकिन बाद में श्रीधर ने देखा कि महाप्रभु चैतन्य को अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ मांगूंगा, तो सोच विचार करके क्या मांगा उसने कि आप ना वैसे ही आओ बहस करो और जन्म जन्म तक मैं केला बेचने वाला बनूं, आपके अवतार में मैं भी आ जाऊं केला बेचने के लिए और आप मेरा छीन के ले जाओ फ्री में एंड में। वो भी खुद के लिए नहीं मांगा, उनके लिए ही मांगा जिससे उनको खुशी मिलेगी। वैसे आत्मदेव था, वो देख रहा है कि इनको प्रसन्नता होगी अगर मांगूंगा कुछ मैं। कहते हैं आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, प्रिय है, वो मुझे आप दे दीजिए। तो शिवजी नृत्य करने लगे स्वप्न में, डांस करने लगे आनंद से, अरे आज तक मुझे जो प्रिय है किसी ने मांगा नहीं। सब लोग बोलते हैं पत्नी दो, पति दो, पैसा दो, ये दो और प्रमोशन दो, यही मांगते हैं। मुझे जो प्रिय है, जो मैं देना चाहता हूँ, वो किसी ने नहीं मांगा, आपने मांगा है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नृत्य किया उन्होंने शिवजी ने आनंद से और कहा, सुबह उठोगे तो स्नान करके अपने कुएं में उतर जाओ। उस जमाने में ना कुएं में जीना हुआ करते थे, सीढ़ियां हुआ करती थी। उतरोगे तो दाहिने हाथ में एक सुरंग लगेगा, टनल, उस सुरंग के अंत में मेरी प्रिय वस्तु आपको मिलेगी। तो रात में जग गया, एक्साइट हो गई, तुरंत सुचिर्भित हो गया, स्नान किया उसने और कुएं में उतरा रात के अंधेरे में, और जैसे कहा था वैसे ही कुएं में राइट साइड में टनल था, उसमें प्रवेश किया उसने। उस कुएं के वो जो सुरंग के अंत में क्या मिला उसको, राधा वल्लभ जी की मूर्ति प्राप्त हुई, श्री राधा वल्लभ जी का प्राप्ति हो गई। तो फिर शिव जी के साथ में राधा वल्लभ जी का भी उन्होंने पूजन शुरू किया। शिव जी ने कहा था कि मेरे प्रिय वस्तु है, आप उसका पूजन करो। तो वो ये बार बार हमारे शास्त्र में प्रमाणित है, आप अगर शास्त्र ठीक से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जिन्होंने भी सच्चे दिल से देवी की पूजा की है, सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा की है, सच्चे दिल से शंकर जी की पूजा की है, उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती ही है निश्चित रूप से। तो फिर आत्मदेव ने फिर राधा वल्लभ जी का सेवा आरंभ किया, बहुत देर तक सेवा किया उनका। एक दिन राधा वल्लभ स्वप्न में आए, पहले शंकर जी आए थे, राधा वल्लभ स्वयं स्वप्न में आए, कृष्ण भगवान स्वयं बहुत सुंदर। उन्होंने कहा, आत्मदेव मेरे बंसी का अवतार हो चुका है। हाँ, ये देखिए, ये है बंसी का अवतार, हरि वंश, श्री हित हरि वंश। हरि वंश का मतलब क्या, हरि बंसी, हरि वंशी, हरि वंश। तो ये मेरे मुरली का अवतार हो चुका है मध्य प्रदेश में, वो भी आ रहे हैं वृंदावन में, जब वृंदावन में आएंगे तो आप मुझे उनको भेंट में दे देना, आपकी कन्या का विवाह उनके साथ करना और दहेज में मुझे दे देना उनको। और खूब आनंद आया स्वप्न में। वहां पर बंसी के अवतार जो हरिवंश जी हैं, वो भी युवावस्था में थे, उनका विवाह हो चुका था, उनको स्वप्न दिया कि आप ब्रज में चले जाओ और ब्रज में आपको आत्मदेव ब्राह्मण की मुलाकात होगी, और आत्मदेव ब्राह्मण की मुलाकात होगी तो उसकी कन्या वो आपको विवाह में देंगे और मुझे भी दहेज में देंगे, उसको स्वीकार कर लेना। तो अपनी पहली पत्नी को छोड़कर वो ब्रज में आए, बड़े विरक्त संत थे, ऐसे नहीं कि वो गृहस्थ हैं, इसलिए बड़े ही विरक्त थे। और उनका टाइटल है श्री हित, आज भी जो भी उनके आचार्य उनको श्री हित का टाइटल लगता है, जैसे हमारे कैसे प्रभुपाद, वो एक टाइटल है। तो श्री हित हरिवंश, तो यथावकाश ना ये हित हरिवंश हरिवंशी महाराज ब्रज में आए, उनकी पहचान नहीं थी लेकिन ऐसा आत्मा का नाता भगवान ने जोड़ दिया था, जैसे ही एक दूसरे के सामने आए ना आत्मा से पहचान गए कि ये आत्मदेव है, ये हरिवंश जी हैं। ऐसे गले लगाया उन्होंने ब्रज वृंदावन में, इसी जगह पर ये जो मदन थे ना वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, ऐसा आलिंगन दिया, दोनों को अश्रुओं से नहलाया, दोनों ने प्रेम के अश्रुओं से कई देर तक आलिंगन देते रहे भावावस्था में। फिर आत्मदेव बड़े ही सरोदय भावना से अपनी कन्या को लेकर आए और उनका विवाह करा दिया और दहेज में राधा वल्लभ जी को दे दिया उनको। तभी उन्होंने क्या किया, महात्मादेव की जो लड़की थी उनकी पत्नी बनी, उसको मध्य प्रदेश भेज दिया, क्योंकि भजन करने के लिए आए थे भगवान के आदेश से, प्रचार करने के लिए आए थे, गृहस्थ जरूर थे, तो पत्नी को भेज दिया मध्य प्रदेश। और इस जगह पर रहे, वो किस जगह पर रहे, मदन टेर नाम के जगह पर रहे। और कहाँ रहे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये बरगद का पेड़ है, ये उन महान वट वृक्ष में से एक वृक्ष है ब्रज में। ब्रज में तो बहुत सारे वट वृक्ष है ना, भांडीर वट है, बंसी वट है, एक तो भांडीर वट भांडीर वन में और एक बंसी वट है, ऐसे बहुत सारे लीला वाले प्रसिद्ध बंसी वट के वृक्ष हैं, उसमें से ऐसा एक वट का वृक्ष है। ये तो अभी उस पेड़ का बच्चा है, बहुत सारे पेड़ बदली हो चुके हैं, पर ओरिजिनल पेड़ था ना वो इतना विशाल था, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन पुराने जमाने में ना बरगद के पेड़ का बुंधा ट्रंक इतना विशाल हुआ करता था कि उसके अंदर कमरे हुआ करते थे, हॉलो पोकड़ जगह हुआ करती थी, और साधु लोग इनके ढोली के अंदर बैठकर भजन किया करते थे, वो एक पेड़ की गुफा की तरह ही वहाँ माहौल होता था, इतनी बड़ी जगह होती थी अंदर, आप खड़े हो सकते हो या बैठ सकते हो, झुक कर जाएंगे तो ऐसे अलग अलग साइज के गुफा कैसे होती है, छोटी बड़ी किसमें आपको जाना पड़ता है झुक के, किसी को बैठ के, किसी को चल के, अंदर जाके बड़ी हो जाती है। हम लोग उधर गए थे ना द्वारका में जाम्बूवर के गुफा में, वो तो पूरा तो फाइव स्टार होटल था अंदर, पूरा इतना ह्यूज था जमीन के अंदर, बड़ा विशाल एक था, क्या कहते हैं उसको, पूरा बंगले जैसा था अंदर पूरे, लेकिन थी गुफा, वो उसके अंदर कुआं भी है गुफे के अंदर। एनीवेज, तो इस पेड़ के अंदर तीन ऐसे ढोलियां थी, ढोलियां मतलब जगह, तीन लेवल पे तीन थे। तो उन्होंने क्या किया, बीच वाले लेवल में राधा वल्लभ जी को रखा, नीचे वाले ढोली में खुद बैठकर भजन करने लगे, और ऊपर वाली ढोली में राधा वल्लभ जी के वस्त्र अलंकार सब रखे, साहित्य पूजा के साहित्य। तो उनका पूरा वो डुप्लेक्स है ना, ट्रिप्लेक्स फ्लैट हो गया उनका पूरा, वो पेड़ ही उनका रहन सहन का सब कुछ उसके अंदर हो गया। और उसमें रहते हुए उन्होंने बहुत साल सेवा किया राधा वल्लभ जी का। तो राधा वल्लभ जी जो है ना, उन्होंने यहाँ पर निवास किया है, हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिस के बिल्कुल बाजू में मदन टेर में यहाँ पर निवास किया उन्होंने कई सालों तक। और बहुत रोचक कथा है उसकी, बताता हूँ आपको आगे, आप दर्शन कीजिए। देखिए तमाल का पेड़ कितना सुंदर वन बना के रखा हुआ है, देखिए। हाँ, इसमें मैंने कई बार हर यात्रा में ढाई ढाई घंटे समय बिताया है, इतना सुंदर स्थान है। हमारे हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियंस, आईसीयू स्पेशलिस्ट, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर इस मट्टी में लोटपोट हो गए हैं, क्योंकि तो मैंने कहा ये रज आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी, ये रज जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली है, इसके अंदर पूरे रहस्य छुपे हुए हैं। तो सब लोग लोटपोट हो गए पूरे, हमारे पास वीडियो भी है उसके, डॉक्टर लोग अभी मुझे आंखों के सामने है वो दृश्य। हाँ, अभी फिलहाल में नर्तकी माता जी भी हमारी छोटी सी यात्रा में लोटपोट होकर आई है वहाँ पर, ऐसी महिमा है यहाँ की, इतना सुंदर ठंडा स्थान है ये। ये देखिए, मैंने कहा ना आपको प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ये, हरेर नाम प्रभु, ये अभी अभी उनका 2 महीने पहले कोरोना के अंदर देहांत हो गया उनका, कोरोना के लिए नहीं हुआ लेकिन वो बहुत साल से वहाँ पर थे, उनको भी मैं लेकर वहाँ पर कई बार गया हूँ और कथा सुनाया हूँ बहुत सारी सुंदर सुंदर। ओके, तो अभी इसकी जो कथा बताता हूँ आपको मैं, हरिवंश जी महाराज यहाँ पर रहे, और हरिवंश जी महाराज का यहाँ रहने के बाद क्या हुआ? संत के रहने से क्या होता है, वातावरण में परिवर्तन आता है। जितने भी जीव, जब जंगल था ना उस समय, अभी तो प्रभुपाद का भी जंगल था, तब तो जंगल 400 साल पहले की बात है ये, जब चैतन्य महाप्रभु थे, वल्लभाचार्य थे, ललिता जी के अवतार स्वामी हरिदास ठाकुर ये बांके बिहारी वाले स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी थे, वल्लभाचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे उस समय के, ये तो हरिवंश जी महाराज, वो एक ही समय पे अलग अलग टाइम पे पृथ्वी पर थे। तो मैंने कहा ना आपको, रूप गोस्वामी का मुलाकात भी हुआ है वल्लभाचार्य जी से, चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ है वल्लभाचार्य जी से, सबका निम्बारकाचार्य से हुआ है, वल्लभाचार्य से हुआ है, मध्वाचार्य से हुआ है, सबकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई है। एनीवेज, तो वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, शेर और हिरण जो है ना गले मिल रहे हैं, शत्रुता ही समाप्त हो गई, वैर भाव समाप्त हो गया, ऐसा अद्भुत वातावरण निर्माण हो गया यहाँ पर। और वो अद्भुत वातावरण निर्माण होने की वजह से उनकी कीर्ति फैल गई, कोई साधु आया है वृंदावन में और उसके वजह से सारे शेर हिरण हाथी सिंह गले मिल रहे हैं, कोई किसको खा नहीं रहा है, सब लोग आनंद से जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, इनका प्रभाव है इतना, इनकी अस्तित्व का, साधु के अस्तित्व का, साधु के वातावरण में बहुत पावर होती है। हम भी चिंता लेकर जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए, उनके सानिध्य में आते हैं प्रश्न भूल जाते हैं। हाँ, तो एक डाकू था, उसका नाम था नरवाहन डाकू। हाँ, तो नरवाहन डाकू इतना खूंखार डाकू था कि उसकी बड़ी मंडली भी थी, उसकी सरदारों की टोली भी थी उसकी, लेकिन ये इनकी स्टाइल क्या था, वो लूटने के लिए अकेला जाएगा, इतना बलवान, अकेला जाएगा, अकेला लोगों को लूटेगा और कपड़ा उतार के उल्टा टांग देगा पेड़ पर लूट बाट करके, ऐसा हाहाकार मचाया था। और पूरा ना उस समय पर, उस जमाने में वृंदावन की सारी भूमि जमुना पार तक उसकी थी, उसका ही साम्राज्य था, लेकिन वो कुख्यात था, मतलब क्या, इल फेमस था, वो प्रसिद्ध था लेकिन वो अच्छे के लिए प्रसिद्ध नहीं था, ही वॉज इल फेमस। तो उसके कान पर खबर आ गई कि मुझसे अधिक प्रसिद्धि किस संत को प्राप्त हो रही है, मुझसे अधिक वो प्रसिद्ध हो रहा है, मैं उसको नष्ट करूंगा जाकर, उसको ईर्ष्या हो गई। तो निकला, बोले साधु को मारने के लिए निकला, तलवार लेकर निकला, घोड़े पे बैठ के, मुकुट पहन के, वो सरदार ना राजा का, चोरों का राजा था ना वो, उसका एक दरसभा भी हुआ करती थी, रहने का निवास भी था वृंदावन के बाहर उसका। तो अकेला निकला तलवार लेकर, पूरा मोजड़ी पहनकर, पूरा राजवस्त्र पहनकर, मालाएं पहनकर, मुकुट पहनकर, घोड़े पे बैठकर निकला, ब्रज के भूमि में प्रवेश किया ना, तो उसको लगा अरे यार साधु को मारने के लिए घोड़ा तलवार की जरूरत क्या है, छोड़ दो उसको, अकेला हाथी काफी है। तलवार फेंक दिया, घोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद ना उधर की रेती में चलने लगा, जमुना जी की रेती में, तो खड़ाऊ के वो मोजड़ी के अंदर रेती आ गई, तो जूता भी फेंक दिया, बहुत कीमती था उसको फेंक दिया, मन में इतना क्रोध है ना, ईर्ष्या और क्रोध है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वातावरण में प्रवेश करने के बाद में सब ऐश्वर्य छूट रहा है उसका, उसको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो वातावरण के प्रभाव से उसको भी पता नहीं चल रहा है, सब छूट रहा है, बाद में गर्मी लगने लगी उसको, तो उसने सब अलंकार उतार दिए, भरजरी वस्त्रों को उतार दिया, गर्मी होने लगा, सब उतार दिया, और जब तक यहाँ पहुँचा ना, तो एक कोपिन फिर था खाली, जूता भी निकाल दिया, अलंकार निकाल दिया, मुकुट उतार दिया, सब कुछ फेंक दिया, तलवार भी फेंक दिया, और एक कोपिन पैर के वहां पहुंच गया, लेकिन आंखों में क्रोध है अभी भी। तो मिला हरिवंश महाराज से, हरिवंश महाराज को गुरु को देख रहा था, क्या तू ही हरिवंश है? तो शांत चित्त से हरिवंश महाराज कहते हैं, अरे नरवाहन प्रभु निहार, मुझे क्यों निहार रहा है, प्रभु को निहार, मैं तो निहारने जैसे वस्तु नहीं है, प्रभु को निहार, उनका सौंदर्य को निहार। तो नरवाहन ने जब प्रभु को निहारा तो तत्क्षण उसका हृदय जो है ना वो पिघल गया पूरा, कुछ ही क्षणों में उसका क्रोध ईर्ष्या सब नष्ट हो गया और वो चरणों में गिर गया हरिवंश महाराज के, महाराज जी मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपका वध करने के लिए आया था। लेकिन साधु के शब्द में कितनी शक्ति होती है, साधु के संग में कितनी शक्ति होती है, इतना भयंकर खूंखार राक्षस भी उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और वो तत्क्षण, ऐसा नहीं कि पहले जप किया, फिर चार नियम पालन किया, फिर सेवा किया, फिर धीरे धीरे दीक्षा दिया, फिर धीरे धीरे ब्राह्मण दीक्षा हुआ, फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़ा, फिर पंडित हो गया, फिर प्रचार किया, ऐसा धीरे धीरे प्रगति नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट विरक्ति आ गई उसको, और वहीं रह गया वो, मारे महाराज जी मैं आपको चरणों में रहना चाहता हूँ, वापस जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सब गलत काम छोड़ देना चाहता हूँ। तो सरदार को क्या लगा, कि हमारे सरदार राजा जो हैं वो अपना कार्य करने के लिए गए हैं, हाँ क्या कहते हैं उसको, मिशन पे गए हैं, आएंगे, लेकिन आए नहीं लौट के। तो उनको लगा कि भाई शेर वेर खा गया होगा बीच में रास्ता में, ये जंगल की जमीन है क्या मालूम, ये तो लंगोटी पहनकर साधु बन गए और जैसे कहते वैसे करने लगे, भजन करने लगे। तो फिर ना ब्रज के जंगल के अंदर कोई कष्ट पाता होगा ना, तो उसका कष्ट निवारण करने के लिए रात रात गश्त लगाने लगे पूरे वृंदावन में, भगवान का नाम लेते हुए हरिवंश महाराज की कृपा छत्र में रात रात को ब्रज में परिक्रमा देते थे, कोई कष्ट में है पीड़ा में है तो सहायता करते थे। तो एक दिन क्या हो गया, इसका ये राजा यहाँ पर आके गया, उनको लगा मर गया, तो अपने में से किसी योग्य व्यक्ति को राजा बना दिया उन्होंने, और उनके टीम का काम चालू था टोली का, एक आदमी को लूटपाट कर कपड़ा उतार कर लूट कर उल्टा टांग दिया था पेड़ पे। तो बीच रात में वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया जा रही है वहां से, वो कह रही है अरे तू बचाओ बचाओ क्यों बोल रहा है, तो नरवाहन नरवाहन बोल, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है वहां पर गश्त लगाता है, उसको पुकारेंगे तो वो आवाज की ओर आएगा आपको बचाएगा। तो फिर बुढ़िया के संदेश के अनुसार वो नरवाहन नरवाहन करके पुकारने लगा और नरवाहन वहां पहुंच गया, और जिस तरह से उसको टांगा था ना उल्टा, वो समझ गया कि मेरी टोली का काम है ये, पहचान गया वो मोडस ऑपरेंडी। हाँ तो क्या किया उसने, उसको पहले उतारा नीचे और उसको वस्त्र दिया पहले, और उसको लेकर सीधा पहुंच गया अपने अड्डे पर जहां पर वो रहा करते थे, और बोला इसको सब वापस करो, जो भी उससे चोरी किया आपने सब वापस करो, उसको और वस्त्र दो अलंकार दो, और उसको पालकी में बिठाकर घर पहुंचा के आओ। इतना उसका वट था ना, उसका इतना खूंखार था ना, वो साधु बन गया था फिर भी बल था उसके अंदर, और सरदार को जिंदा देकर उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, आप करो अपना काम मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में ना बहुत बड़ा संत बन गया वो, इसकी कथा भक्तमाल में आती है, एक अद्भुत परिवर्तन के रूप में, एक खूंखार डाकू एक कोमल हृदय भक्त कैसे बना, उसकी कथा भक्तमाल में आती है। नाभा गोस्वामी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन्होंने भक्तमाल लिखा है, उनको साक्षात दर्शन हुआ करते थे इन भक्तों के चरित्र का, और ये दर्शन देहुआर उन्होंने सब किताबें में उनकी कथाएँ लिखी हैं, उसमें रूप गोस्वामी की कथा भी है, सनातन जी की कथा भी है, जीव गोस्वामी की कथा भी है, मीराबाई की कथा भी है, गोवर्धन डाकू की कथा भी है, सबका दर्शन उनको हुआ करता था गुरु की कृपा से, और वो देखते थे वो उसको लिखते थे कथा के रूप में, और वही भक्तमाल है ग्रंथ। तो आगे जाकर बड़ा संत बनाइए, उसका भी दर्शन करने के लोग आने लगे, तो बड़ी विरक्ति आ गई, और उन्होंने कहा महाराज जी, अपने गुरु से कहा हरिवंश महाराज से, कि मैंने इतनी सारी भूमि हड़प ली बलपूर्वक, अभी मैं आपके सेवा में इसको दान करना चाहता हूँ, मैं धनुष बाण लेकर आपके जगह पर खड़ा होकर मदन टेर के ऊपर एक बाण चलाऊंगा, वो बाण जहां तक पहुंचेगा वो सारी भूमि में आपको दान कर दूंगा। तो नरवाहन ने मदन टेर पे खड़े होकर बाण चलाया है, वो जमुना जी को पार करके वृंदावन को नाप के जमुना जी को पार करके उसके पार पहुंच गया, इसलिए वो सारी भूमि जो है ना वृंदावन के और जमुना पार तक की भूमि हरिवंश महाराज को दान दिया उसने, और फिर वो भूमि में फिर उनका मंदिर बनाया गया, जो आज जिस जगह मंदिर है ना वो दूसरा मंदिर है, पहला मंदिर बनाया गया, फिर मुसलमानों ने उस पर हमला किया भ्रष्ट कर दिया उसको, फिर नया मंदिर बनाया गया, उसमें आज राधा वल्लभ जी विराजमान है, लेकिन जो पहले वाला मंदिर है ना वो उन्होंने बनवाया था, अभी आज उसमें हित हरिवंश महाराज का मूर्ति यानी फोटो रखा हुआ है, वहाँ उनकी सेवा होती है, और उसके बगल में नया मंदिर बनाया है लाल पत्थर का, उसमें ठाकुर जी की सेवा होती है, राधा वल्लभ जी का आज जो मंदिर जो है वो सेकेंड मंदिर है। तो इसका रहस्य क्या है कि जमुना जी के पार जब बाण चला गया ना, तो बाण सरोवर जो है वो भी राधा वल्लभ जी के ही गोस्वामी के अंडर आता है, क्योंकि जितने भी जमीन बनाई गई राधा वल्लभ जी की जमीन मानी गई उसको, हरिवंश तो विरक्त थे, उन्होंने अपने शिष्यों में जमीन बांट के मंदिर बनवाया। तो इत हरिवंश का एक शिष्य था, उनका नाम था हरिराम व्यास जी, वो भी ब्रज के बड़े नामी संत हो गए हैं, स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास जी, हित हरिवंश जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, सभी एक समकालीन थे, छह गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव के, सब एक समय के थे, और उन्होंने फिर आज भी आप जाएंगे ना जमुना पार करके मानसरोवर के पास राजा रानी माँ रोई थी विरह में, वो जगह भी इनके ही आधिपत्य में है, उनका विग्रह है, राधा रानी का विग्रह है, हम लोग मानसरोवर कहते हैं उसको, लेकिन उनका नाम ही राधा रानी है। तो ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से वहाँ पर मंदिर क्यों है, इसका इतिहास नरवाहन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस वन को हम प्रणाम करते हैं। बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, बहुत प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं इसके अंदर। तो हम बड़े ही सरहृदय भावना से मदन टेर को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे का स्थान जो है उसका उनकी गौशाला है, और आज गौशाला के विषय में छोटा सा वर्णन करके आज की कथा को विराम देते हैं। प्रभुपाद जी ने उनका गौ पर इतनी श्रद्धा थी, वो जानते थे कि गौ प्रसन्न होगी तो ये हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा जीवन सुधरेगा, हमारा जीवन पाप से मुक्त होगा। इन्होंने इसलिए इस्कॉन को लग के ही पीछे जमीनें ले ली और वहाँ पर गौशाला आज विराजमान है। बिल्कुल इस्कॉन के पीछे ही आप जाएंगे ना, पीछे गेट से, तो गौशाला की जगह आरंभ होती है। बहुत विशाल जगह है, इतनी विशाल जगह है कि हमारी पिछली यात्रा जो थी ना 2019 की, वो उसमें करीब 7 से 8 हज़ार लोग थे। वो 7 से 8 हज़ार लोगों का बैठने का पंडाल था ना, वो गौशाला के अंदर था। वो खाली पंडाल इतना था, और उसके अंदर 2 एकड़ की जगह किचन की जगह, यानी कितनी जगह हो गई, कम से कम 2 और 4, 6, 8 एकड़ जगह तो खाली 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 जगह थी। बाकी जगह तो गौशाला के अलग है, उसमें गौशाला अभी कम से कम 400 गायें हैं, बहुत सुंदर गायें हैं, और वहाँ के गायों का गोबर का कंडे बनते हैं यज्ञ के लिए, गौमूत्र के बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, अगरबत्तियाँ बनती हैं, बहुत सारी बहुत सुंदर सेवा करते हैं गौ की। तो प्रभुपाद जी का जो गौ पर श्रद्धा थी उसका ये प्रमाण है कि यहाँ पर बड़े ही सुंदर शास्त्रोक्त तरीके से बड़े प्रेम से गौओं की सेवा होती है। गायें भी हैं, बैल भी हैं, बच्चियाँ बछड़े सब कुछ है यहाँ पर। देखिए कितने प्रेम से रखते हैं, देखो दोनों गैया जो है ना कैसे एक वाले को गले में आलिंगन दे रहे, देखो बड़ा अद्भुत दृश्य है ये। अभी गौ के बारे में कहेंगे तो रात तक बैठ बोल सकते हैं, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो गौ हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा हमारा फाउंडेशन है गौ की रक्षा, गौ की सेवा। और वो केवल लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, गौ हमारे जीवन का आधार है। हाँ, उसके दूध के लिए उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, गोबर के लिए नहीं करनी चाहिए, तो स्वार्थी लाभ हो गया। एक माता की तरह एक पुत्र जैसे सेवा करता है, वैसे गौ की हमको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ भगवान को बड़े प्रिय हैं, और गौ भगवान अपना नाम उनसे जोड़ते हैं। भगवान का नाम गोपाल है, भगवान को बड़ा गर्व है इस बात का कि मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, केवल कृष्ण है, मैं गोपाल कृष्ण हूँ। बड़ा आनंद से अपना नाम गोपाल कृष्ण रखा है, और अपने धाम का नाम गौलोक वृंदावन रखा है, जहाँ पर गौवे निवास करती है, उस गौ के लोक को अपना धाम बना दिया उन्होंने। तो इस स्पॉट पर हम अपना आज की कथा को विश्राम देते हैं, और किसी को कोई प्रश्न है तो 5 मिनट है, और मैं मदन मंजरी को विनती करता हूँ कि वो रूप मंजरी को देखते रहें, अगर आई होगी तो फोन करें। इज शी देयर? नॉट येट। तो 5 मिनट के लिए किसको प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप बना देना सबको कोर्स। कब? ये कौन है? एक प्रश्न आपने बलदेव प्रभु जी को पूछा था, थोड़ा विवरण मैं भी करना चाहूंगा उसका। किधर है समीर? हाँ, आप जाकर उधर चालू कर दीजिए उसको लगाना। हाँ, रेडी हो जाइए आप। तो किसी ने कहा था राधा कुंड में निवास करने पर गुरु महाराज ने कहा था कि क्या आपके राधा कुंड निवास से राधा रानी कृष्ण प्रसन्न है क्या, गुरु परंपरा प्रसन्न है क्या? ये बड़ी विशेष चीज है राधा कुंड का निवास है ना, ये रूप गोस्वामी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, अंतिम गंतव्य स्थान, लास्ट स्टेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो लास्ट स्टेशन में अगर आपको निवास करना है इस जीवन में, तो बिना गुरु की आज्ञा से आप नहीं कर सकते उसको। अगर बिना गुरु की आज्ञा में वहां जाकर रहेंगे भी कुछ लाभ नहीं होगा उसका। जैसे ब्रह्मा जी भी वृंदावन में आए थे ना, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन दर्शन वृंदावन का वास्तव में कब हुआ? जब भगवान की कृपा हुई, जब भगवान के सामने पश्चाताप किया, भगवान ने माफ किया, जब भगवान की कृपा हुई तो उनको हर धूलिका कण चिंतामणि के रूप में नजर आया, हर वृक्ष काम कल्पतरु के रूप में नजर आया, हर गैया जो है काम धेनु के रूप में नजर आई, और कृष्ण भगवान को परम भगवान के रूप में जाना उन्होंने, पूरे वृंदावन को दिव्य धाम के रूप में देखा। तो धाम तो वही है, पेड़ भी वही है, गैया भी वही है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है वैसे, वो चेतना नहीं निर्माण हो रही है। वो चेतना निर्माण कब होती है? वो गुरु कृपा से होती है। तो गुरु के आदेश के बिना राधा कुंड में निवास नहीं करना चाहिए, ब्रज में भी नहीं जाना चाहिए। गुरु जी के संग है, उनके भक्तों के संग है, गुरु जी का प्रोजेक्ट है, गुरु जी की सेवा है, तो ही ब्रज में जाएंगे, तो ब्रज में कुछ समझ में आएगा। नहीं तो गए और आए, बैल भी गए जाते हैं, ऊँट भी जाते हैं और गधे भी जाते हैं, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके चेतना में, क्योंकि ब्रज का जो निवास है वो चेतना पर आधारित है। वो आपको कमरा मिल गया, वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, तो रह जाओ, उससे निवास नहीं होता है राधा कुंड का। और राधा कुंड का निवास तो बहुत बहुत ऊंची चीज़ है, इसलिए हम लोग तो 86 में पहली बार गए थे राधा कुंड, तो गुरुजी ने हमको 98 तक स्नान ही करने नहीं दिया। और 98 भी कैसे स्नान करने दिया, 12 साल तो कम से कम हर साल जाते रहे हम लोग यात्रा में। उन दिनों तो वृंदावन तो हम ऐसे जाते थे महाराज के साथ में, क्या बताएं आपको। तो 98 की यात्रा में सच्चिदानंदन महाराज के साथ में हम लोग यात्रा गए थे। देखो उसी यात्रा में मैंने वो 4 रोटियां खाई थी ना पहले पहले माले पर, उसी यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। वो 98 की यात्रा में सूर्य कुंड में सच्चिदानंदन महाराज जी का व्रत था कार्तिक का, सूर्य कुंड में निवास का और जप का। तो वहाँ से वो आए थे हमारे राधा कुंड वाले यात्रा में भी आए थे, परिक्रमा करने के लिए आए थे गोवर्धन की। तो शाम को 7:30 बजे दोनों महाराजों ने मिलकर कम से कम 45 मिनट तक साइलेंस में प्रवचन दिया था कि राधा कुंड की महिमा क्या है, इसमें स्नान करने के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ऐसा पूरा प्रवचन देने के बाद में 2,500 लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंस में राधा कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड, ऐसा 3 स्नान किए थे। इतना वो उत्कट स्नान, उसके बाद में कभी दोबारा स्नान करने का मौका नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ये ऐसा अद्भुत चीज है। तो ऐसे अद्भुत चीज को एक बार प्रभुपाद जी वहां पर गए थे, तो कुछ लोग विदेशी भक्त थे उनके साथ में, तो उन्होंने अपना डाइव लगाया और स्विमिंग करना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा गेट आउट ऑफ द वाटर, तुरंत पानी से बाहर निकलो, ये स्विमिंग करने की जगह नहीं है, ये स्वयं राधा रानी है, तो आपके आनंद के लिए और मजा करने के लिए जगह नहीं है, बाहर आ जाओ यहाँ से, आप यहाँ पर आप प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। तो ये बहुत उत्कट चीज है। और राधा कुंड में निवास करना है तो गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी आध्यात्मिक उन्नति वहां पर प्राप्त नहीं हो सकती। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछिए, बहुत सारी बातें मैंने दिन भर बताई आपको। यस, प्रकाशानंद प्रभु जी बताइए, इनको जरा अनम्यूट करने का क्या हिसाब है। हाँ अनम्यूट करिए प्रभु जी आप अपने आप को। हाँ 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 बोलिए प्रभु जी। यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
यस प्रभु जी,
प्रभु जी जब जब कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं तो इतने सुंदर होते हैं दर्शन, तो देखते ही एक तो दिमाग स्टन हो जाता है, मतलब कुछ काम नहीं करने लगता है। लगता है ये देखे वो देखे क्या देखे, और समय भी 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा खड़े रहोगे आप, पीछे भी बैठ जाओगे, ऐसा लगता है कि हमने पूरा कभी दर्शन ही नहीं किया। इसके बारे में आप क्या हल दोगे, क्या करना चाहिए हमें?
कुछ नहीं, भगवान का दर्शन तृप्ति और अतृप्ति एक साथ देता है। तृप्ति और अतृप्ति यानी आपकी प्यास बुझा भी देता है और प्यास बढ़ा भी देता है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, तो जाते रहिए, उनको नजरों में समाते रहिए, नजरों के प्याले बनाइए और उस प्याले में उनके दर्शन का अमृत पीते रहिए, और जितना पियेंगे उतनी प्यास बढ़ेगी, और पीते रहिए और पीते रहिए और पीते रहिए, बस। मेरा एक कहना का बताना भूल गया मैं आपको, कृष्ण बलराम मंदिर एक ऐसा मंदिर मैंने देखा है कि बीच ठंड में जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तब भी मंगला आरती 4:30 बजे 500 लोग होते हैं, और अधिकतर बाहर के लोग होते हैं, गेस्ट लोग रहते हैं, जो गेस्ट हाउस में रह रहे हैं वो मंगला में आते हैं 4:30 बजे बीच ठंड में। इतना पॉपुलर मंदिर है हमारा। हाँ, बड़ी विशेष कृपा है वहाँ पर। और जब हम पहली बार गए थे ना 1986 में, क्या कहें आपको, वहाँ पर वो धनुर्धर स्वामी थे, उस समय गुरुकुल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ना 18 आइटम की हमारे लिए फीस्ट बनाई थी, 6 स्वीट्स, 6 सब्जियाँ और बाकी सारे पदार्थ अलग। और राधानाथ महाराज और उन्होंने मिलकर हमको दोनों स्वामियों ने हमको परसा था भोजन, और हम लोग ना 4 घंटे भोजन ही कर रहे थे, मतलब ऐसे बैठते थे फिर चलते थे कुछ समय के लिए, सब भक्त लोग 22 भक्त थे खाली, ज्यादा नहीं थे 22 थे, दे आर वॉकिंग अप एंड डाउन, फिर बैठते थे फिर और खिलाते थे फिर खाते थे फिर चलते थे, ऐसे करके दोपहर को 2 बजे शुरू किया था, शाम को 6 बजे तक हम लोग लंच लेते रहे। ऐसा अद्भुत अनुभव, इतना प्रेम और इतनी कृष्ण बलराम की कृपा, क्या बताएं आपको। आ गई रूपमंजरी, आ गई, चलो ठीक है अभी।